नमस्ते, मैं आराव हूँ। 9 Not 3 के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। कोलिन निकोज की पुस्तक डोंट मेक इट वियर्ड ऑनलाइन उद्यमिता, सोशल मीडिया उपस्थिति और बिक्री पर केंद्रित व्यावहारिक ज्ञान कथा है। इसका मूल प्रश्न यह है कि इंटरनेट पर कारोबार करते हुए लोग अपनी विश्वसनीयता और मानवीय सहजता क्यों खो देते हैं। निकोज के अनुसार, लगातार दिखने, बेचने और सफल दिखने का दबाव अक्सर उद्यमियों को बनावटी प्रदर्शन, नकल और असहज संदेशों की ओर धकेलता है। पुस्तक इस प्रवृत्ति के विरुद्ध अधिक सीधे, व्यक्तिगत और संबंध केंद्रित संचार का पक्ष लेती है। लेखिका अपने अनुभवों, हल्के हास्य और आत्मचिंतनात्मक प्रश्नों के माध्यम से पाठक को यह देखने के लिए कहती है कि वह किसके लिए काम कर रहा है, किस प्रकार के लोगों से जुड़ना चाहता है और बिक्री को लेकर उसे झिझक क्यों होती है। यह कोई तकनीकी सोशल मीडिया मैनुअल नहीं है। इसका उद्देश्य सामग्री बनाने की चालों से अधिक उस मानसिकता और व्यवहार को बदलना है जो ऑनलाइन संवाद को कृत्रिम बनाते हैं। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, बनावटी ऑनलाइन प्रदर्शन के बजाय पहचान योग्य मानवीय उपस्थिति। पुस्तक का केंद्रीय तर्क है कि इंटरनेट पर प्रभावी होने के लिए किसी तैयारशुदा व्यक्तित्व का अभिनय आवश्यक नहीं है। निकोल्स उन प्रचलित तरीकों पर प्रश्न उठाती है जिनमें उद्यमी हर पोस्ट को अत्यधिक चमकदार, प्रेरणादायक या बिक्री केंद्रित बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसी सामग्री ध्यान तो मान सकती है, लेकिन वह भरोसा या स्थायी संबंध अनिवार्यतः नहीं बनाती। इसके विपरीत, लेखिका व्यक्ति के वास्तविक स्वभाव, रोजमर्रा के अनुभवों, सीमाओं और हास्य को संचार का हिस्सा बनाने की बात करती है। इसका अर्थ हर निजी बात सार्वजनिक कर देना नहीं है। अधिक उपयोगी अर्थ यह है कि भाषा, उदाहरण और राय उस व्यक्ति से मेल खाएं जो व्यवसाय के पीछे मौजूद है। जब ऑनलाइन व्यक्तित्व और वास्तविक व्यवहार में बहुत दूरी होती है तो सामग्री बनाना थकाऊ हो जाता है और दर्शकों को भी संदेश यांत्रिक लग सकता है। निकोल्स का दृष्टिकोण प्रामाणिकता को एक व्यावसायिक रणनीति से अधिक दीर्घकालिक संचार अनुशासन की तरह रखता है। पाठक को यह पहचानना होता है कि उसकी स्वाभाविक आवाज क्या है, किन विषयों पर वह ईमानदारी से बोल सकता है और किन लोकप्रिय प्रारूपों को अपनाना उसके लिए केवल अनुकरण होगा। इस तरह पुस्तक दृश्यता को अभिनय नहीं, पहचान योग्य उपस्थिति के रूप में समझती है। दूसरा, व्यक्तिगत मूल्यों से सफलता की अपनी परिभाषा बनाना। निकोल्स ऑनलाइन उद्यमिता में तुलना की समस्या को गंभीरता से लेती है। सोशल मीडिया पर दूसरे लोगों की आय, जीवन शैली, अनुयायी संख्या और बिक्री के प्रदर्शन को देखकर उद्यमी अक्सर अपने लक्ष्य बदल लेते हैं। पुस्तक इस प्रतिक्रिया को अस्थिर मानती है क्योंकि किसी अन्य व्यक्ति का लक्ष्य, संसाधन, पारिवारिक स्थिति या जोखिम लेने की क्षमता पाठक की परिस्थितियों से अलग हो सकती है। इसलिए लेखिका आत्मचिंतन को व्यावसायिक निर्णयों की आधारशिला बनाती है। पाठक से अपेक्षा है कि वह पहले यह स्पष्ट करे कि उसके लिए पर्याप्त आया समय, काम की प्रकृति और व्यक्तिगत संतुलन का क्या अर्थ है। यह स्पष्टता केवल प्रेरक अभ्यास नहीं है, इससे यह तय होता है कि किस तरह के उत्पाद, ग्राहक, सामग्री और कार्य तालिका उपयुक्त होंगे। अपनी परिभाषा के बिना व्यक्ति बाहरी संकेतों के अनुसार लगातार दिशा बदल सकता है और हर लोकप्रिय रणनीति को जरूरी मान सकता है। पुस्तक का व्यावहारिक संकेत यह है कि सफलता को केवल सार्वजनिक रूप से दिखाई देने वाले परिणामों से नहीं मापा जाना चाहिए। व्यक्तिगत प्राथमिकताओं के साथ मेल खाने वाला व्यवसाय अधिक टिकाऊ निर्णयों को संभव बनाता है। इस विषय के माध्यम से निकोल्स नकल आधारित ऑनलाइन महत्वाकांक्षा के स्थान पर स्वयं की दिशा तय करने का आग्रह करती है। तीसरा, अपूर्ण अनुभवों को भरोसेमंद कहानी में बदलने की सीमा। पुस्तक बताती है कि कठिनाइयों, गलतियों और अनिश्चितताओं को छिपाने वाली ऑनलाइन छवि अक्सर अविश्वसनीय लग सकती है। निकोल्स अपने पाठकों को व्यवसाय की अव्यवस्थित वास्तविकताओं पर बात करने के लिए प्रोत्साहित करती है, क्योंकि संघर्ष का अनुभव लोगों को मानव स्तर पर जोड़ सकता है। किसी उद्यमी की चुनौतियां, सीख और दिशा बदलने के क्षण यह दिखाते हैं कि उसके पीछे एक वास्तविक व्यक्ति है, केवल प्रचार संदेश नहीं। लेकिन इस विचार में एक आवश्यक संतुलन भी है। हर निजी संकट को सामग्री बना देना या केवल अव्यवस्था पर जोर देना पेशेवर क्षमता को कमजोर कर सकता है। उपलब्ध विवरणों के अनुसार पुस्तक की उपयोगी दिशा यह है कि ईमानदारी के साथ यह भी स्पष्ट रहे कि व्यक्ति समस्या से क्या समझ रहा है और आगे क्या कर रहा है, अर्थात कमजोरी का साझा करना निराशा का प्रदर्शन नहीं, संदर्भ और संबंध का माध्यम होना चाहिए। यह दृष्टिकोण विशेष रूप से उन उद्यमियों के लिए प्रासंगिक है जो स्वयं को विशेषज्ञ दिखाने के दबाव में बहुत दूरस्थ या निष्प्राण लगने लगते हैं। निकोल्स की शैली में व्यक्तिगत कथा का उद्देश्य सहानुभूति पाना भर नहीं है, उसका उद्देश्य दर्शकों को यह अनुभव कराना है कि कारोबार के पीछे का व्यक्ति विश्वसनीय, सीखने वाला और संपर्क योग्य है। चौथा, बिक्री की झिझक को दबाव नहीं स्पष्ट आमंत्रण में बदलना। डोंट मेक इट वीड का एक मुख्य व्यावहारिक क्षेत्र बिक्री के साथ जुड़ी असहजता है। बहुत से उद्यमी प्रचार करने से इसलिए बचते हैं कि उन्हें लालची, परेशान करने वाला या अत्यधिक आत्मकेंद्रित समझे जाने का डर होता है। निकोन्स इस झिझक को केवल बिक्री कौशल की कमी नहीं मानती, वह इसे इस डर से जोड़ती है कि दूसरे लोगों को पता चल जाएगा कि व्यक्ति पैसा कमाना चाहता है। पुस्तक का उत्तर आक्रामक बनाने की तकनीक नहीं बल्कि स्पष्टता और संबंध है। यदि उद्यमी अपने प्रस्ताव, उसके उपयोग और उसके लिए उपयुक्त व्यक्ति के बारे में साफ बोलता है तो बिक्री को छिपाने या घुमाने की जरूरत कम होती है। इसी तरह पहले से मौजूद दर्शकों की रुचि, प्रश्नों और अनुभवों का ध्यान रखना नए लोगों के पीछे अंधाधुंध भागने से अधिक सार्थक हो सकता है। यह दृष्टिकोण दर्शक को केवल संभावित ग्राहक नहीं संवाद में शामिल व्यक्ति मानता है। पुस्तक के अनुसार बिक्री तब अधिक स्वाभाविक लगती है जब सामग्री और प्रस्ताव के बीच संबंध दिखे, भाषा व्यक्ति की अपनी हो और आग्रह कृत्रिम तात्कालिकता पर निर्भर ना करे। इस तरह निकोल्स नैतिकता को बिक्री से अलग नहीं करती बल्कि सम्मानजनक संवाद को उसके संचालन का आधार मानती है। मंत्र में आत्मसंदेह, निरंतरता और कार्रवाई के लिए सरल अभ्यास, पुस्तक उद्यमिता में आत्मसंदेह और इम्पोस्टर सिंड्रोम को सामान्य अनुभवों के रूप में रखती है। निकोल्स का संकेत यह नहीं है कि पहले भय समाप्त हो फिर व्यक्ति ऑनलाइन दिखना शुरू करे, बल्कि कार्रवाई और सीखने की प्रक्रिया के भीतर ही आत्मविश्वास विकसित करने की बात सामने आती है। समीक्षाओं से यह भी स्पष्ट है कि पुस्तक में अध्यायों के अंत में प्रश्न और अभ्यास दिए गए हैं जिनका उद्देश्य पाठक को निष्क्रिय सहमति से आगे ले जाना है। ये संकेत व्यक्ति को अपनी झिझक, लक्ष्य, सामग्री के स्रोत और बिक्री संबंधी धारणाओं पर विचार करने में मदद करते हैं। यह कार्यपुस्तिका जैसा पहलू पुस्तक को केवल राय संग्रह बनने से बचाता है। निकोल्स निरंतरता को पूर्णता से अलग करती दिखाई देती है। हर सामग्री का असाधारण होना आवश्यक नहीं लेकिन नियमित और पहचान योग्य संवाद समुदाय बनाने में भूमिका निभा सकता है। साथ ही बाधाओं को स्थायी पहचान मानने के बजाय अस्थायी समस्या के रूप में देखना उपयोगी है। यह कोई गारंटी नहीं देता कि हर प्रयास सफल होगा, पर विफलता के डर से निष्क्रिय रहने की प्रवृत्ति घटा सकता है। पुस्तक की उपयोगिता इसी संयोजन में है, आत्मस्वीकृति के साथ ठोस अगला कदम तय करना। निष्कर्ष में, यह पुस्तक उन छोटे व्यवसाय मालिकों, स्वतंत्र पेशेवरों, कोचों, रचनाकारों और प्रत्यक्ष या डिजिटल बिक्री से जुड़े लोगों के लिए उपयोगी हो सकती है जिन्हें सोशल मीडिया पर उपस्थित रहना कृत्रिम, थकाऊ या नैतिक रूप से असहज लगता है। विशेषकर वे पाठक इससे लाभ ले सकते हैं जो बार बार दूसरों की सामग्री की नकल करते हैं, बिक्री का उल्लेख करने से बचते हैं या लगातार तुलना के कारण अपनी दिशा खो देते हैं। पुस्तक का व्यावहारिक लाभ इसकी भाषा और अभ्यास केंद्रित संरचना में है। यह पाठक को केवल अधिक पोस्ट करने की सलाह नहीं देती बल्कि यह जांचने को कहती है कि वह क्या बेच रहा है, किससे बात कर रहा है और उसका संचार उसके मूल्यों से मेल खाता है या नहीं। समान श्रेणी की कई पुस्तकों में मंच वृद्धि, एल्गोरिदम या प्रचार की युक्तियां मुख्य होती है। निकोल्स की अलग पहचान यह है कि वह ऑनलाइन बिक्री की असहजता को मानवीय व्यवहार, आत्मछुई और संबंधों की समस्या के रूप में देखती है। इसका अर्थ यह भी है कि अत्यंत तकनीकी विपणन योजना, विस्तृत आंकड़े या मंच, विशेष रणनीति खोजने वाले पाठक इसे सीमित पा सकते हैं। साथ ही लेखिका की बहुत अनौपचारिक और स्पष्ट भाषा हर पाठक की पसंद नहीं होगी। फिर भी जो व्यक्ति बिक्री को अधिक साफ, व्यक्तिगत और कम बनावटी ढंग से समझना चाहता है उसके लिए यह एक सुलभ और विचारोत्तेजक मार्गदर्शिका है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं कॉलिन निकर्स, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए Amazon लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।